संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। समय सार परमागम की 155वीं गाथा चलाना है। पुण्य पाप अधिकार चल रहा है और पिछली गाथा में जैसे नाचार्य ने कहा था कि पुण्याधिकार समाप्त होता है, माने पुण्य के निषेध की दृढ़ता से जो गाथाएं थी वो समाप्त हो गई, इसलिए उसे पुण्याधिकार समाप्त होना वो कहते हैं। अब जब सवाल आता है कि पुण्य मुक्ति का कारण नहीं है तो मुक्ति का कारण क्या है, तो वो कहते हैं कि आत्मा का गाथा जो अपन ने पढ़ी 55वीं में कि जीवाजी सद्दहनम सम्मतम तेह अधगमोड़ाणम रागादि परिहरणम चरणम एसोदु मुख पहो। जीवादि के सिद्धांत रूप, उसके ज्ञान रूप और रागादि के परिहार रूप आत्मा का प्रणमन होना, ये वास्तविक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है और यही मुक्ति का मार्ग है। कल कही थी थोड़ी चर्चा कि अमृतचंद्राचार्य देव इस गाथा की टीका में ज्ञान को ही मुख्य करके बात करते हैं, ज्ञान का सिद्धांत रूप प्रणमन और ज्ञान का चारित्र रूप प्रणमना और ज्ञान का ज्ञान रूप प्रणमना, ये सिद्धा ज्ञान चारित्र है। सीधी सच्ची बात तो ये है कि ज्ञान पर पदार्थों से अपने उपयोग को हटाकर आत्मा जब अपने में लगता है तो जो श्रद्धा गुण में निर्मलता होती है उसे ज्ञान का सम्यक रूप प्रणमना कहते हैं। जो चारित्र गुण में निर्मलता होती है वे चारित्र का ज्ञान रूप प्रणमना कहते हैं और ज्ञान में जो निर्मलता होती है उसे ज्ञान में प्रणमन कहते हैं। सीधी सच्ची बात यह है कि एक आत्मा के आश्रय से ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होते हैं। दो बातें बहुत स्पष्ट हैं कि जब हमें तीन चीजें गिनाई जाती है ना तो ये तीनों हमें करना है, तो हमें ऐसा लगता है कि भैया श्रद्धा सम्यक दर्शन के लिए क्या करें और सम्यक ज्ञान के लिए क्या करें और सम्यक चारित्र के लिए क्या करें, तो हम बहुत स्पष्ट शब्द रूप में जैसा समझते हैं कि सिद्धांत के लिए तो हमें सात तत्व समझकर और उनका विश्वास करना पड़ेगा और ज्ञान के लिए हमें शास्त्रों का अच्छा अभ्यास करना पड़ेगा, गुरुमुख से बात को समझनी पड़ेगी, और चारित्र के लिए फिर हमारे निश्चय की भी बात है तो रागादि को छोड़ना पड़ेगा, ऐसा उसे लगता है, और नहीं दरबार की अनुवृत्त महावृत्त धारण करना पड़ेंगे। ये जो हमारी वृत्ति है ये गाथा उस पर सीधा अटैक है। वो कहते हैं तीनों की प्राप्ति के लिए तीन काम करना ही नहीं है, ये कई काम करना है। और वो क्या करना है कि आत्मा का सही स्वरूप समझकर अपने ज्ञान को आत्मा का गेय बनाकर उसमें ही उसे जानते रहना है, तो इतना करना है। तो करना इतना है और होंगे उसी से तीन। जैसे मां आप ये कहें कि चारित्र में और श्रद्धा में अपन थोड़ा फर्क डालते हैं ना, ज्ञान का और श्रद्धा का तो एक सही हो गया कि हमने ज्ञान ने अपने अंदर में निर्णय किया, तो जो अपने आत्मा में अपनापन स्थापित किया, जो आत्मा को निज रूप जाना, ये हो गया सम्यक ज्ञान, और उसमें अपनापन स्थापित किया ये हो गया सम्मादर्शन। क्या फर्क है निज रूप जाना को और चाहे निज रूप सिद्धांत की अपनापन स्थापित किया, तो ये तो वास्तव में बिल्कुल दो चीज है ही नहीं, दो कुछ करने की इसमें कुछ बात है ही नहीं। और ये है भी कि सम्यक साथ है ज्ञान हुए, ये दोनों एक साथ ही पैदा होते हैं। अब साथ तो सम्यक चारित्र भी होता है क्योंकि अनंतानबंदी के साथ भी जाती है और उसमें भी शुद्धि होती है। फिर वो कहते हैं रागादि परिहरणम, क्योंकि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान तो उसी क्षण पूर्ण हो जाते हैं, माने सम्यक पने की अपेक्षा। वैसे कमी जैसे उपशम सम्मा दर्शन हुआ तो छायक समय दर्शन होना ये कमी रह गई ना, और ज्ञान में भी अभी केवल ज्ञान होना है लेकिन दोनों का सम्यकपना वो एक साथ पैदा हो जाता है दोनों में, और चारित्र में का अंश प्रकट होता है, और फिर वो धीरे धीरे तेरहवें गुण स्थान तक वो बढ़ती है। तो इसलिए उन्हें रागादि परिहरणम, फिर रागादि के छोड़ने को चारित्र कहते हैं। तो वो उसकी भाषा ऐसा लगता है कि इसमें कुछ छोड़ना पड़ेगा। लोग एक दिन ये कहते हैं कि अनुव्रत महाव्रत लेकर हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह ये छोड़ना पड़ेंगे, और अपने को अध्यात्मी मानने वाले ये कहते हैं कि कसाएं छोड़नी पड़ेंगी, वही रागादि माने कसाएं, रागादि परिहरणम माने कसाएं, क्योंकि दो ही है ना, एक तो दर्शन मोहिनी और एक चरित्र मोहिनी, और रागादि जो भेद है वो चरित्र मोहिनी के हैं। तो चारित्र मोहिनी कर्म को छोड़ना पड़ेगा माने कसाएं छोड़नी पड़ेंगी, ऐसा लगता है। लेकिन अब वो प्रक्रिया तो एक ही हुई ना, काम तो एक ही करना पड़ा ना, उसको हम दो कह रहे, क्योंकि आत्मा का अनुभव हुआ तो अनंतानंद जी के साथ छूट ही गई ना है? तो करना तो एक ही काम है और दिख रहे तीन, कहनी अब आगे जब बढ़ेंगे जो चारित्र बाकी है उसे पूरा करेंगे ना, तो फिर तो रागादि को छोड़ना पड़ेगा ना, गुस्सा कम करना पड़ेगा, मान कम करना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि उसकी भी विधि, वो जो आत्मा को तुमने देखा जाना है ना, पर उसको देखते जानते ही रहना है, उसको उसमें कुछ नहीं करना है। गुस्सा बहुत बुरा होता है, मान बहुत खतरनाक है, इस क्रोध ने दुनिया में कितनी बर्बादी की है, मान के खाता रावण की क्या दुर्दशा हुई, ये कुछ नहीं है। इसलिए मान ने नहीं करना, क्या करें, तू तो आत्मा में स्थिर रहे तो अपने आप एक क्रोध आदि पैदा नहीं होंगे। माने कसायों को खत्म करने का उपाय भी वो ही है। इसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूं कि एक आदमी ने एक कारखाना डाला, और जिस कारखाने में वो एक दिन में 100 मोटर बनाता है, कोई उसके जो मारुति कार है और उसकी जो कैपेसिटी है कि एक महीना भर में 3000 कारें वो निकाल देता है, 100 कार रोजाना में निकालने की कैपेसिटी है। यद्यपि वो 100 कार प्रतिदिन नहीं निकाल सकता, लेकिन वो 5 दिन में 500 कारें निकाल देता है, तो हम एवरेज लगा के कह देते हैं 100 दिन में, समझे ना। ये कार एक दिन में नहीं निकल सकती है, उसकी प्रक्रिया में 5 दिन तो लगेंगे ही। अब वो ये कहता है कि हमको मार्केट में बहुत अच्छी चल गई हमारी गाड़ी, अब हमको ये जो हमें 100 रोजाना निकालते हैं और बिक्री मांग तो 1000 की है, 1000 भी हमारी रोजाना बने तो हम बिक्री में चली जाएगी, कितनी हमारी पहले से बुकिंग हो जाती ना। तो अब क्या करना है उसे, तब कहें अब कुछ नहीं करना है, क्योंकि जो उस कारखाना डालने के लिए रिसर्च करनी पड़ी थी, एक एक चीज नई खोजनी पड़ी थी, जगह चुननी पड़ी थी, मशीनें लानी पड़ी थी, उनको कैसे चलेगी, एक एक कदम पर उसके अंदर बहुत बातें आई थी, और अब तो सब ठीक हुआ ही है, बस रिपीटेशन करना है। फिर उन्हीं के मशीना का ऑर्डर दे दो, वो आदमी आ जाएंगे, वही लगा देंगे, वो बन जाएंगे, वो एकदम मतलब अब समझिए ना, वो ही करना है। अब जो मात्रा बढ़ानी है तो अलग नया कुछ नहीं करना है। तो पहली जो वितरागता पैदा करनी थी सम्य दर्शन सम्य ज्ञान के साथ जो पैदा हुई है, उसमें तो सारी प्रक्रिया अपनानी पड़ी थी। अब चारित्र का काम में अब क्या है, कुछ नहीं, बस अब उसी की मात्रा बढ़ा दो, कारखाना बढ़ा दो, मात्रा क्या बढ़ा दो, अब तुमने क्या किया था बोलो, कि हमने पर से उपयोग हटाकर आत्मा पर लाए थे, फिर कितने फैले थे, बस क्षण क्षण अंतर मुंह होता ना, एक क्षण का तो इतना ही ठहरे थे, अब क्या कहें, थोड़ा ज्यादा ठहर जाइए, बस खत्म होगा, हो गया काम है। तो ज्यादा ठहर जाना और काम हो गया, बस खत्म। इसलिए पुरुषार्थ में नई रिसर्च की बिल्कुल जरूरत नहीं है, चारित्र के हटाने के उसी का रिपीटेशन करना है। अपन व्यायाम करते हैं तो पहले तो हमें सिखाते हैं कि दंड बैठक लगाना अथवा कोई एक आसन, तो पहले तो हमें बहुत सीखना है कि आसन कैसे लगाना, गुरु की जरूरत है, वो बार बार देखे करे, और एक दफे सही आसन लग गया अब क्या करना है, बस अब एक मिनट को लगा था, अब सवा मिनट को लगाना दूसरे दिन, फिर डेढ़ मिनट करना, फिर दो मिनट करना, धीरे धीरे करना। वो कहते हैं इकट्ठा करोगे तो फिर बहुत पैरों में दर्द हो जाएगा, होगा ही नहीं। अब बस यही करना है, आसन तो वो ही लगाना है कि गुरु जी आप मेरा क्या काम है, अब तो मैं डिस्टर्बेंस हूं। एक दफे तुमने सही लगा लिया ना, सही दंड बैठक लगा लिया ना, अब 10 से 11 करो, 12 करो, ऐसा करो, जितना बढ़ाना वो बढ़ाओ। तो वो कहते हैं मारे के तो फिर वो ही रहा ना चारित्र में, और कुछ नए टाइप का कुछ नहीं करना है। और हम तो ये समझते कि नहीं नहीं भैया अनुमृत हमें परस्त्रीय के लिए छोड़नी पड़ेगी, फिर स्वस्त्री छोड़नी पड़ेगी, और फिर इसमें अगर स्थूल चोरी छोड़नी पड़ेगी, फिर बारीक चोरी छोड़नी पड़ेगी, फिर मोटा मोटा झूठ बोलना छोड़ना पड़ेगा, फिर बारीक बारीक झूठ बोलना छोड़ना पड़ेगा। अब मोटा और बारीक झूठ में कैसे भेद डालें हम हैं? तो वो तो सब हो जाएगा, वो कुछ चीज नहीं है। यहां असलियत में तो वो ही मोक्ष पथ है। कौन सा? आत्मा के आश्रय से, आत्मा का आश्रय लेना, ये इस गाथा में कहा है। और इसके लिए उन्होंने प्रसाद उपाय की 3 गाथाएं पेश की हैं। निकालो आपके पास एक किताब है ना, 351 पेज पर एक किताब में। यह आचार्य जयसेन की उक्त टीका पर समयसार गाथा 13 एवं आचार्य अमरचंद कृत प्रसाद सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ में समागत सम्म दर्शन ज्ञान और चारित्र की परिभाषाओं की छाया विद्यमान है। लगता है आचार्य जयसेन ने उन्हीं के भाव को यहाँ प्रस्तुत कर दिया है। अब ये क्या गाथा, ये 3 जो गाथाएं हैं 22, 35 और 39 आएगी प्रसाद सिद्धि उपाय की। इन तीनों में अंत में एक शब्द है, बस देखो आत्म रूपम तत्व तीनों में है। जीवादैवादीनाम तत्वार्थानाम सिद्धानम सदैव कर्तव्यम और विपरीता भी निवेश रहतम विवक्तम और आत्म रूपम तत्व। फिर दूसरे में ज्ञान में देखो आत्म रूपम तत्व, फिर आत्म रूपम तत्व के सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक तारे तो आत्म रूप ही है। और वहां कहा था ज्ञान रूप है, ज्ञान रूप ज्ञान का सिद्धांत रूप प्रणमन। तो ये आत्म रूपम तत् और ज्ञान का सिद्धांत रूप प्रणमन, ज्ञान का ज्ञान रूप प्रणमन और ज्ञान का चारित्र रूप प्रणमन, इन दोनों का एक ही अर्थ है। असली कहते हैं देखो पहले अपन को निश्चय कठिन दिखता है और व्यवहार सरल दिखता है। वास्तव में निश्चय बहुत सरल है और व्यवहार बहुत कठिन है। क्यों? तो उसमें तो ये बताएंगे कि ये 5 अणुवृत्त लो, फिर उसमें स्थूल झूठ छोड़ो। अब स्थूल झूठ क्या है, सूक्ष्म झूठ क्या है, तो उसी परिभाषा करें। तो अब हम बताएंगे कि जिससे तुम्हें सजा मिल जाए वो स्थूल झूठ है, और जिस झूठ से सजा तो नहीं मिले लेकिन नैतिकता भंग हो जाए वो सूक्ष्म झूठ। मोटा अंतर आपने कभी ख्याल में किया ऐसा क्या है? ये 5 पाप छोड़े, मोटे मोटे छोड़े और छोटे छोटे छोड़े, तो मोटे मोटे और छोटे छोटे क्या होते हैं कि दूसरे की जेब में से पैसा चुराना ये बड़ा झूठ है। क्यों? क्योंकि इससे जेल में जाना हो सकता है। और पति की जेब में से रुपए चुराना ये छोटा झूठ है, क्योंकि इसे जेल में नहीं जाना पड़ेगा, होता तो दोनों ही। अब तो पैसे चुराने की क्रिया तो एक सी ही है ना, क्यों? तो इसमें छोटा और मोटा क्यों? तो 2 चीजें होती हैं, एक राजदंड और एक समाज दंड। राजा जो दंड देता है वो बड़ा अपराध है, जो समाज दंड देती है वो छोटा अपराध है। जो राजा जो दंड देता है उस काम को बोलते हैं शास्त्रीय भाषा में अन्याय, और समाज जिसका दंड देती है उसे बोलते हैं शास्त्रीय भाषा में अनैतिक। अंदर समझे ना, क्योंकि गवर्नमेंट न्याय का पालन कराती है और समाज नीति का पालन कराती है। वो कहते हैं नैतिक नहीं है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आप इसका अंतर समझने के लिए बहुत सरल उपाय है कि गवर्नमेंट का कानून ये कहता है कि कोई लड़का लड़की अपनी राजी से भाग गए और उनने राजी से ही स्त्री पुरुष जैसे संपर्क भी स्थापित कर लिए तो अदालत उन्हें कोई सजा नहीं देगी। पेश कर दोगे, वो कहेंगे हाँ। यदि कोई ये कहेगा कि इसने मेरे से जबरदस्ती की तो ही उसे सजा मिलेगी। यदि ये सिद्ध हो गया कि ये दोनों अपनी राजी से भागे थे और दोनों बालिग हैं, समझिए ना, तो फिर कोई सजा नहीं है। इसका मतलब वो अन्याय उसको मानते, जबरदस्ती को अन्याय मानती है। राजी से कोई कुछ करे वो नहीं, अब समाज दंड देगी। ये पड़ोसी की लड़की को लेके भाग गया, ये तो वो क्या अनैतिक है? क्यों अपनी चाचा की लड़की को लेके भाग गया, वो महा अनैतिक है। लेकिन वो यदि वो देखो चाचा की लड़की को लेके भाग जाए लेकिन दोनों राजी से भागे हों तो अदालत दंड नहीं देगी। क्यों? लेकिन समाज कहेगी बहुत अन्याय हो गया, बहुत अनर्थ हो गया, गजब हो गया, गजब हो गया, हैं इसी जी करो। अब वो तो समझेंगे ना, तो एक अनैतिक हुआ, एक हुआ अन्याय। अब ऐसे ही पांचों पापों पर लगाना और खोजना। अब इसको उदाहरण दो ना कि दक्षिण भारत में मामा की लड़की से शादी करना और भांजी से शादी करना नैतिक है और उत्तर भारत में अनैतिक है। अब उत्तर भारत में समाज उसका दंड देगी और दक्षिण भारत में समाज उसका दंड नहीं देगी। क्या समझे ना अभी? और गवर्नमेंट का कानून तो सारे हिंदुस्तान को एक ही है, वो कहते हमें कुछ लेना देना नहीं है, दोनों राजी हैं खत्म, और राजी नहीं है जबरदस्ती हुई है तो दंड, और नहीं तो कोई नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है। क्योंकि नीति का पालन समाज करवाती है और न्याय का पालन गवर्नमेंट कराती है। देखो गवर्नमेंट के पास दंड देने की सत्ता है और समाज के पास वास्तव में आज तो सत्ता है नहीं। ये पंचायतों पे और केस चल जाते हैं, क्योंकि यदि कोई पंचायत ऐसा डिसीजन दे दे, क्यों, तो फिर वो जाके अदालत में केस कर देते हैं तो सरपंचों को हथकड़ी पड़ जाती है। जैसा अभी दोनों लड़का लड़की गए थे और इनको बिल्कुल जाति बाहर कर दो कि निकाल दो कि इनको मार डालो कि इनको फांसी पे दे दो, तो फिर वो बचेंगे नहीं। वो तो कहेंगे हमने राजी से कहे थे ना, तो तुम्हें कुछ करने का अधिकार नहीं था, तुमने क्यों इसमें अरंगा लगाया बीच में, उल्टा तुमने उनको परेशान किया, इसका अपराध का दंड उन्हें और मिलेगा। तब अब तो कानूनन तो अधिकार नहीं है, लेकिन हमारी एक सामाजिक दंड व्यवस्था है ना, कि हम सामाजिक बहिष्कार तो कर ही सकते हैं ना। हम कह सकते हैं हम 100 आदमी का समाज है, अब वो आदमी इससे कोई बोलेगा नहीं, तो ये बहुत बड़ा दंड है। कभी उसका कोई समाज बोलेगा ही नहीं तो वो उस दंड से तो बहुत घबराता है आदमी। तो समाज इस प्रकार के दंड के माध्यम से अपने नैतिक नियम का पालन कराते हैं, और जो जो वो ढीला पड़ता जाता है तो वो पालन नहीं भी होता है। तो यहां आचार्य करेंगे निश्चय कि निश्चय में तो कुछ कर, वास्तव में एक आत्मा का आश्रय तुमने किया और अनंत गुणों में शुद्धि पैदा हो जाएगी। अनंत अनंत की जो तो कहने की बातें हैं भाई, 5-7 गुण हैं जो 7 आत्मा बता रहे थे ना अपने, क्या नाम सुमत जी, विकृति सब गुणों में थोड़ी है, अस्तित्व गुण वस्तित्व गुण इनमें कोई विकृति हुई नहीं, होती नहीं है, हो ही नहीं सकती है। प्रमेयत्व गुण में कौन सी विकृति होगी? ज्ञान दर्शन चारित्र सुख वीर ये जो गुण है कुछ लिमिटेड बहुत, पर उनमें ही विकृति होती है। अब बस वो शुद्ध हुए तो सब शुद्ध हैं और वो अशुद्ध हुए तो सब अशुद्ध हैं, क्यों कि बाकी में होने जाना तो कुछ है नहीं भाई, इनकी अशुद्धि की, क्योंकि अखंड आत्मा में जो है ना यदि एक श्रद्धा गुण में मिथ्या दर्शन हुआ तो पूरे ही आत्मा मिथ्या दृष्टि है, तो हर गुण मिथ्यात्व से भरा हुआ हो गया, हर गुण में मिथ्यापना आ गया। वास्तव में कि हर गुण में तो मिथ्यापना होता नहीं। तो कितनी सीधी और सरल बात है कि तेरे को अकेला आत्म सन्मुख परिणाम करना है, आत्म रूपम तत्, और बाकी सब धर्म ऑटोमेटिक होते चले जाएंगे। अब तीन कह लो चाहे एक कह लो, आत्म रूपम तत्व ये प्रशासित उपाय में जो आत्म रूपम तत्व जो पड़ा हुआ है, इसको जैसे नाचार्य ने ध्यान में रखकर और अपने उस टीका का अर्थ किया है। अब व्यवहार में गिनाएंगे तो फिर एक एक चीज, फिर एक अणुवेद, फिर उसके पांच भावनाएं, फिर उनके एक एक के पांच पांच अतिचार, और पर विवाह करना है ना। अब पर विवाह करना माने क्या? वो अकेले अपनी शादी कर सकता है, दूसरे की शादी नहीं कर सकता, कि बाल बच्चों की करेगा कि नहीं करेगा, क्यों? तो वे स्वाहे के पर, बोलो पंडित, क्या वीरेंद्र ना, क्या स्वाहे के पर स्त्री पुत्र बाल बच्चे स्वाहे के पर, समझ में आ रहा क्या कह रहा हूं मैं? वे स्वाहे भाई साहब, क्योंकि उनकी शादी वो कर सकता है, वो अतिचार नहीं है। और पड़ोसी के बच्चे की शादी करे वो अतिचार है। देखो, अपनी लड़की लड़के की शादी की चिंता करना, यहां वहां कोशिश करना, वो अनुवृत्ति के लिए अधिकार है, दोष नहीं है वो उसके लिए। लेकिन वो पड़ोसी की मुफ्त में ही चिंता करता फिरे, ख्याल में आया ना? तो आदत ही होती कुछ लोगों की, सारे गांव का ठेका लेके बैठ गए, इसका उससे मिला देना, उसका उसको मिला देना, इससे इसके अपने दस पांच टीपना अपनी जेब में ही रखे रहते हैं कुछ है? आचार्य कहते कि नहीं, क्यों? ये तो उसकी मजबूरी है, कौन करेगा उसकी? ब्रह्मचर्य तो लिया नहीं है, तो बच्चे तो होंगे, अनुमृत लिया है ना, बच्चे तो होंगे, तो दूसरा कौन करेगा? खुद ही करना पड़ेगी ना। तो देखो, अनुमृत में दूसरे की बेटी की शादी की चिंता करने का निषेध है, और अपनी बेटी की शादी की चिंता करने का निषेध नहीं है, है? अब जिनने ब्रह्मचर्य ले लिया, अब उनकी अपनी तो होने का सवाल ही नहीं है, क्यों? अब दूसरे की, अरे भाई वो तो ब्रह्मचर्य अनुवृत वाला ही दूसरे की नहीं कर सकता था, तो तू कैसे करता फिर रहा है? और तो ब्रह्मचर्य महावृत्ति वाले ही कर रहा है। अभी हमारे दिगंबरों में तो नहीं, लेकिन हमने सुना है कहीं कहीं श्वेतांबरों में कि वो महाराज ही सबकी शादी करा दे, वे कह रहे हैं तुम्हारी लड़की की लड़की की शादी करना, वो कुछ मना नहीं कर सकते, उन्हें करना ही पड़ेगा। क्या हो गया? क्या कह रहे? देखो मेरे को सुनता नहीं हूं मैं, अभी सुनाने की आदत जिंदगी में सुना ही सुनाया है ना, सुना नहीं है। 12-13 वर्ष की उम्र से सुनाना शुरू किया है, हैं? जब तक गला खराब नहीं हो रोजाना सुनाना ही पड़ता है, ससुराल भी जाऊं तो वहां भी सुनाना पड़ता है, एक दिन का भी आराम नहीं मिलता। जैसे महिलाएं हैं ना, वे कहीं भी जाएं लेकिन रसोई तो उन्हें संभालनी ही पड़ेगी, इससे नहीं बच सकती हैं, ऐसी हमारी हालत है। तो सुनाने सुनाने की इतनी होगी, सुनने की बात नहीं रह गई। ये जो हम उदाहरण दे रहे हैं ये तो बहुत स्थूल है, इसलिए दे रहे हैं कि वो आपको अंतर समझ में आए, न्याय का भोग क्या है और अन्याय का भोग क्या है ना? देखो, इसको मैं थोड़ा स्पष्ट करूं तो और आपकी समझ में आएगा कि पवनज्जय, उदाहरण देके बता रहा हूं, अंजना के रूप पर मोहित हो गए और बस बेहोश हो गए, और कहने लगे बस अंजना 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 के खाना के अंजना पहले फिर खाना बाद में, पहले अंजना की बात करो, शादी कराओ पहले और बाद में फिर मैं खाना खाऊंगा। तो क्या किया होगा उनके पिताजी ने? क्यों, क्या करना चाहिए उनके पिताजी को? आज के पिताजी क्या करेंगे? और दूसरे को छोड़ो, तुम्हारा बेटा ऐसा है कि कहीं बेहोश मिले उसके तुम छींटे दो, और जब वो उसको बोलो कि बेटा क्या है, तो किसी लड़की का नाम ले, तो आप क्या करेंगे ये सोचो। क्या बचता है, मैं एक टाटा पाड़ूंगा तुम क्या रहता है, बिल्कुल अब तो हम किस पे उतर आएंगे है? तो पवनजय बेचारे ऐसे नहीं उतरे। पवनजय के पिताजी क्या नाम था उनका, महेंद्र नहीं, हाँ जो भी था, तो वो नहीं उतरे। और उन्होंने कहा कि बेटा चिंता मत करो, ठीक है हम कराएंगे, और अपना बड़ा राज्य है, तुम योग्य हो, उनके राज्य से अपना बड़ा है, वे लड़की से तुम ज्यादा सुंदर हो, वे क्यों मना करेंगे, हम कोशिश करेंगे, चलो खाना तो खाओ। उन्हें डांटा वाटा नहीं मारा, उन्होंने डांटा नहीं, क्यों या तो उनने गलती की है, अपन गलती करते हैं, क्यों कहीं ना कहीं तो गलती है ही ना। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो जो पवनजय का ये व्यवहार था वो अन्याय था कि नहीं था, अनीति थी कि नहीं थी, यानी वो सम्य दृष्टि थे कि नहीं थे। यदि वो सम्य दृष्टि थे तो सम्य दृष्टियों के भी ऐसा व्यवहार हो सकता है क्या, मैंने सम्य दृष्टि भी किसी लड़की को बेहोश हो सकता है देख के क्या, नहीं कि नहीं हो सकता कि तुम सम्य दृष्टि की, सम्य दृष्टि को तो हमने इतना ऊपर बैठा दिया है उसकी तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। अरहंत भगवान को एक दफे हो जाए तो हो जाए, लेकिन सम्य दृष्टि को नहीं होना चाहिए, हमने कल्पना लोक में इतना ऊंचा बैठा दिया है। देखो हो सकता है, घबराना नहीं है, यानी वो ये कहें कि मैं खाना तब खाऊंगा जब पहले मेरे अंजना से शादी होगी, तो सम्मान दर्शन में कोई बाधा नहीं है। लेकिन यदि वो ये कहें कि हर कीमत पे मुझे अंजना मिलना चाहिए, कोई आगे कहे कि उसकी तो सगाई हो गई, ऐसा कहते ही उसका विकल्प टूट जाएगा, सम्मान दृष्टि होगा तो, क्यों कि परस्त्री पर उसका विकल्प नहीं जा सकता, लेकिन कुंवारी जो है उस पर तो उसका विकल्प जा सकता है, वो अन्याय का भोग नहीं है, वो अन्याय की मांग नहीं है, ये तो उचित है कि जो कोई किसी को चाहे तो उससे मांग करे, प्रस्ताव रखे अपने, और विधिवत जो अपनी मर्यादा समाज की और देश की है उसको निभा के शादी करे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अनुमित अनुमित भी लिए हो तो भी, अभी महाव्रत नहीं लिए हैं इसीलिए तो लिए नहीं है ना, क्योंकि वो स्त्री को नहीं त्याग सकता है। कहां अन्याय कहां हुआ, कहां अनीति हुई, और लेकिन वो कहे हो गई तो हो जान दो, हमें तो किसी भी तरीके चाहिए, पकड़ के ले आओ, जबरदस्ती ले आओ, उसे मार के ले आओ, तो वो नहीं हो सकता, फिर वो मिथ्या दृष्टि होगा। अपहरण करके नहीं ला सकता, खास में देखो सैनिक लाए थे अपहरण करके, और भी लाए थे रुक्मणी को हरण करके लाए थे ना, वे उस समय सब मिथ्या दृष्टि थे, समझ गया ना, वो लाएगा तो विधि पूर्वक ही लाएगा, उसको विकल्प विधि पूर्वक लाने का ही होगा, समझ गया ना, उसे अविधि पूर्वक लाने का नहीं होगा, समझ गया ना, समझ सकते कितनी बारीक बात है, अपने आप उसका भेद ही नहीं कर पाएंगे, उसको आपको समझते ही नहीं है। वो ये कह रहा है बार बार कि शादी 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 उससे शादी करूंगा, नहीं करूंगा तो मैं रह जाऊंगा, वो ये नहीं कह रहा कैसे ही पकड़ के ले आओ तुम तो जो भी हो जो होगा, ऐसा नहीं कह रहा है। उसकी स्वीकृति पूर्वक, और उसके बाप भी ये नहीं कह रहे हैं, वे भी सम्मान दृष्टि हैं, वे भी कह रहे हैं हम समझाएंगे उन्हें बुलाएंगे कि ऐसा नहीं कि नहीं मानेगा तो हम चढ़ाई कर देंगे, जबरदस्ती उठा लाएंगे, ऐसा नहीं, आप समझिए ना, मतलब ये मर्यादा है उसमें। अब इतनी बारीक बारीक बात कौन कौन जानता है, कोई सोचता ही नहीं, किसी को सोचने की जरूरत नहीं है, शास्त्रों में तो सब बातें हैं, शास्त्रों में तो सब बातें हैं, कुछ चीजें स्वभाव से ही होती हैं अपन बोलते ना, और कुछ चीजें उसका निर्णय हम कैसे करें। भर्तरी कवि ने से किसी ने पूछा कि भई ये लोग कुछ लोग क्या आखिर भी तुमसे नाराज क्यों है, क्या पूछा, क्या गलती हुई तुमसे, कि हमसे कोई गलती नहीं हुई, हम तो हमेशा हाथ ही जोड़ते रहे, कि गलती क्या हुई, कि सच्ची बता दें क्या, बता दो कि मेरे 99% नंबर आ गए, ये गलती होगी, उसके 33% रह गए। इसमें गलती क्या हुई, ये तो पुरस्कार देने लायक है ना, अब मैं आपको क्या बताऊंगा, खरा पर उसकी तकलीफ का कारण, उसको जलने का कारण, दुखी होने का कारण ये होता है, नहीं होता है लोग में। तो भर्तृहरि कवि ने बहुत बढ़िया एक छंद लिखा है और उन्होंने बताया है, मृग मीन सज्जनानाम तृण जल संतोष बेहत ब्रेती नाम लुब्ध के धीवर प्रश्ना निष्कारण बैरण ओ भवती। तीन चीजें हैं, कौन कौन, मृगे माने हिरण, मीन माने मछली, और तीसरे सज्जन। तीन चीजें हैं, कौन कौन, मृग हिरण मीन मछली और सज्जन। अब इनके कैसे हैं ये तीनों, इनकी थोड़ी परिभाषा कि तृण जल संतोष बेहत वृत्ति नाम, क्या जो हिरण है वो तो घास में तिनके में ही इसकी वृत्ति संतोष है, तिनके मिल जाए खाने को खुश, और मछली पानी में ही संतुष्ट है, और सज्जन संतोष में ही संतुष्ट है। देखो क्या लिखा, मृग मीन सज्जनानाम तृण जल संतोष बेहत वृत्ति नाम, जिनकी वृत्ति कैसी है, एक की घास, दूसरे की पानी, और तीसरे की संतोष। हमें तो ये सब बात में संतोष है, हमें कोई असंतोष नहीं, लेकिन आज जली कटी रोटी मिली थी ना, हमें तो संतोष है, अब इतने लोगों की है तो दो चार रोटी तो जले ही जाएंगे, क्या ठीक है रे। लेकिन उन्हें जो जली कटी सुनाई थी ना, वो तो ठीक नहीं है ना, उसमें तो गुस्सा आएगा ही ना, जली कटी रोटी खा लेंगे, लेकिन कोई जली कटी सुनाए तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि तो इतनी भीड़ होती है, परेशान हो जाते हैं, तो गुस्सा आ ही जाता है, सुनाई देते हैं, इसका नाम है संतोष में संतोष। उनको असंतोष का कहीं कारण दिखाई नहीं देता है, वो सारी परिस्थितियां दिखती हैं, क्या तृण जल संतोष बेहत वृत्ति नाम। अब लुब्धक धीवर पिसुना, लुब्धक माने शिकारी, और धीवर माने धीवर तो समझते ही हो ना, मछली पकड़ते हैं वो, और दुष्ट लोग निष्कारण बैरणो भक्ति, ये बिना मतलब के शत्रु होते हैं, इनसे क्यों पूछ दो क्या कारण है, क्या कारण है, क्या का झगड़ा हो गया, क्या क्या झगड़ा, तुमने क्या बिगाड़ा उनका, तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं। लड़कियों के पीछे नालायक लड़के पड़ते हैं, तो लड़कियों ने क्या बिगाड़ा होता है उनका, निष्कारण वैरणो भवती। अब ये निष्कारण कारण के बिना तो कार्य होता ही नहीं, अब इस सिद्धांत को लागू करो, फिर निष्कारण शत्रु कैसे हो सकते हैं, तीन समझने तो आए, तीन तो वो कहते हैं कि उनका ऐसा स्वभाव ही है, जब निष्कारण कहते हैं तो ये उनका स्वभाव ही है, माने उपादान के योग्यता ही ऐसी है, यानी वो अकारण नहीं है, वो असली कारण है, कि दुष्टों का स्वभाव ही ऐसा है, वो शिकारियों का स्वभाव ही ऐसा है, धीमरों का स्वभाव ही ऐसा है कि मछली को पकड़ेंगे, उनके लिए कोई कान की जरूरत नहीं है कि मछली उनके बाप का कुछ बिगाड़े तब भी पकड़ें, ऐसे हिरण का शिकार करेगा शिकारी, हिरण कुछ उसका बिगाड़े तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। ऐसे ही सज्जन का दुष्टता करे उसके पीछे, इसके लिए जरूरी नहीं है कि सज्जन कोई गलती करे ही, वो निष्कारण बैरणो भक्ति माने उपादानगत योग्यता ही ऐसी है, उनका स्वभाव ही ऐसा है कि वो तो ऐसा ही होगा कि तुम कांटेदार झाड़ी में से उसका फल तोड़ने की कोशिश करोगे तो जो टेढ़ा कांटा है वो तुम्हारे शरीर में छिदेगा, तो क्यों छिदिया वो, हमने क्या बिगड़ा था, कांटे को तो हम छूना भी नहीं चाहते थे, हम तो फल तोड़ना चाहते थे, क्यों कि नहीं वो तो कांटा तो छिदेगा ही, उसमें कोई कारण का नहीं, उसे उस फल से बहुत प्रेम है और तुम उसका फल चुरा रहे इसलिए छिद गया है, क्या कोई ऐसा कारण है क्या, कि वो तो अकारण ही ऐसा करता है, वो बात मैंने बताई है। देखो आगे की गाथा इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत मार्मिक है। देखो कि यदि ऐसा है तो फिर सच्चा मोक्ष का कारण कहते अतः परमार्थ मोक्ष हेतु अन्यत कर्मम प्रतिषेध्यति। कहते मोक्ष के सच्चे कारण में कोई भी कर्म कारण हो ये संभव ही नहीं है, हम सारे कर्मों का निषेध करते हैं। जो क्या लिखा ना विगत गाथा में सम्य दर्शन सम्य ज्ञान चारित्र रूप ज्ञान को मोक्ष का परमार्थ हेतु बताया है, अब आगामी गाथा में यह कहते हैं कि उक्त निश्चय रत्नत्रय को छोड़कर शेष जो सुभाषु भाव और बाल वृत्त बाल तप सुभाजी क्रियाएं हैं वे सब मोक्ष के कारण नहीं है। गाथा का मोतूण निश्चय व्यवहारेण विदुषा पवे तंती मठ मस्जिदान गदीण कम मखयो बिलिहो। ये गाथा ऐसी है कि ये गाथा और ग्यारहवीं गाथा समय सार की ग्यारहवीं और 156वीं गाथा, इसमें जयसेनाचारी ने दो दो वर्ष किए हैं। क्या वहां की तो अभी नहीं करते अपन चर्चा, तो कहता हूं क्या किए लिखा ना उस वहां ये लिखा कि निश्चय नए भूतार्थ है और व्यवहार में अभूतार्थ है, ऐसा लिखा कि नहीं लिखा। और जैसे नाचार्य ने एक अर्थ तो यही किया अमृतम का, और दूसरा क्या किया कि निश्चय नय भी दो प्रकार का है भूतार्थ और अभूतार्थ के भेद से, और व्यवहार नय भी दो प्रकार का है भूतार्थ और अभूतार्थ के भेद से, ऐसा भी अर्थ किया है। ऐसा ही इसमें है क्या लिखा है मोतूण निश्चयत्थम व्यवहारेण विदुषा प्रवर्तन्ति। कहते हैं निश्चय को छोड़कर, निश्चय अर्थ मन पदार्थ को छोड़कर मन भगवान आत्मा को छोड़कर विद्वान लोग व्यवहार में प्रवृत्ति करते हैं, है ना। विदुषा माने विद्वान लोग व्यवहारेण प्रवृत्ति व्यवहार में प्रवृत्ति करते हैं, और नीचे की पंक्ति में क्या है लेकिन कर्मों का क्षय तो आत्मा का परमार्थ का आश्रय करने वाले संतों के ही होता है। इसको हमारे मुनिगण लोग खूब ऐसा दिखाते हैं, देख साफ लिखा ये विद्वानों का कर्म का क्षय नहीं होगा, अकेले संतों का वो मुनिराजों को ही होगा, ये लिखा ना क्लियर। देखो पढ़ो गाथा को आपके में पूरा लिखा ना कि विद्वान परमार्थ तज मोतूण निश्चयत्थम व्यवहारेण विदुषा प्रवर्तन्ति। व्यवहार से विद्वान लोग प्रवृत्ति करते हैं, और लेकिन मोक्ष की प्राप्ति तो निश्चय नय का आश्रय करने वाले संतों को ही होती है। अब एक वहां कह दिया संत दुबे संत है, मुनिराज हम संत हैं और विद्वान माने तुम और मुनिराज माने हम, ऐसा अर्थ हो गया। लेकिन एक जयसेन को बर्दाश्त नहीं होगा, जबरदस्ती विद्वानों को बेवकूफ बना है। कोई विद्वान भी ऐसा नहीं हो सकता है कि वह निश्चय नय का आश्रय करे है? और कोई मुनिराज भी विभाग नय के आश्रय में हो सकते हैं, तो उन्होंने क्या मालूम क्या किया इसकार। फिर देखो मैं पढ़ता हूं, पढ़ने से समझना, मेरे विद्यार्थियों से तो मैं अपेक्षा करता ही करता हूं। मोतूण निश्चय व्यवहारेण विदुषा पवती, ध्यान आया कि नहीं आया, व्यवहारेण एक और व्यवहारेण ना को अलग कर दो, यदि ये ना को अलग छापें और व्यवहारे अलग छापें तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा कि निश्चय को छोड़कर विद्वान लोग व्यवहार में परिवर्तन नहीं करते हैं। क्यों ऐसा अर्थ हो जाएगा, एकदम एकदम उल्टा अर्थ हो जाएगा। अब एक क्या चक्कर है इसमें, मैं विद्यार्थियों को बता रहा हूं, आप लोग आराम करना, समझ लो तो बहुत अच्छी बात है। तो ये व्यवहारेण ये तृतीया है, तृतीया माने करण कारक है, और व्यवहारे ये अधिकरण है, मैंने सप्तमी विभक्ति लगी है, व्यवहारे में सप्तमी लगी है और व्यवहारेण में तृतीया लगी है, समझे। एक में करण कारक है और एक में अधिकरण कारक है, ये दो अर्थ हो सकते हैं कारक। तो अगर व्यवहारे न प्रवृत्त, व्यवहार में प्रवृत्ति नहीं करते हैं, और व्यवहारेण प्रवृत्ति, व्यवहार पूर्वक प्रवृत्ति करते हैं, व्यवहार के द्वारा प्रवृत्ति करते हैं, ऐसा अर्थ निकलता है। अब नीचे की पंक्ति से कैसे सेट होगा कि विद्वान लोग व्यवहार में प्रवृत्ति करते हैं और निश्चय के आश्रय रहने वाले संतों के कर्म का क्षय होता है, तो वो उनने कैसा अर्थ बैठाया मालूम कि विद्वान लोग मन संत संत विद्वान ऐसा लगा ना जरा समझे ना, संत विद्वान व्यवहार में प्रवृत्ति नहीं करते हैं क्योंकि कर्म का क्षय तो निश्चय के आश्रय रहने वाले विद्वान संतों के होता है, समझे ना। मैंने संत और विद्वान को दो जगह अलग अलग खड़ा नहीं किया, क्योंकि संत भी तो विद्वान हो सकते हैं और विद्वान भी तो संत हो सकते हैं ना, आप समझिए ना। जैसे अपने कहा पंडित भी सेठ हो सकता है और सेठ भी पंडित हो सकता है, ये मुफ्त में ही इनकी दो बाटियां अलग खड़ी करने से क्या फायदा है। मैंने संत और विद्वानों में भेद करना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि संत का विद्वान नहीं होते हैं और विद्वान का सज्जन नहीं होते हैं, ये ऐसा अर्थ है। बहुत पहले मैंने इसे भोगा था, जब मैं गरीब मेरी शादी नहीं हुई थी उसके पहले की घटना है। मैं पारोली में एक जैन मिडिल स्कूल में हेडमास्टर था और बड़े दादा भीलवाड़ा में, आपकी मामा है नाना है कौन है, उनके यहाँ स्कूल में अध्यापक थे। पर्यूषण का दिन था तो मैं वहीं रह गया पारोली में, लेकिन एक दो दिन रहा, लेकिन मेरे हिसाब किताब जमाने सब तो बिरत उपवास करने वाले लोग थे, अब मैं तो दोनों टाइम खाने वाला था, तो शाम को वो सुबह की बनी बनाई रोटी रख देते थे, तो मेरे को नहीं जमा, मैं तो ताजी ताजी गर्म गर्म खाने की याद आता जन्म से। तो मैं दो दिन के बाद चला गया, भीलवाड़ा चला गया, क्योंकि भाई साहब से भाभी भी थी तो गर्म रोटी तो घर पर मिलेगी आराम से, तो मैं वहीं चला गया। तो मैं जाकर परिसर में तो वहां प्रवचन कर, मेरे प्रवचन दादा से अच्छे उस वक्त भी होते थे, तो दादा करते थे तो मुझको बैठा दिया गद्दी पे, मैं करने लग गया। अब छड़ाला की पंक्ति चल रही थी, पर उसमें आता ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, और ई परमा में धर्म दरामित दोष निवारण, और धन समाज गज राज बाज तो काज न आवे, और ज्ञान आपको रूप भयो न अचल। तो मैं इसका अर्थ कर रहा था कि रुपया पैसा कुछ काम नहीं आएगा, और ज्ञान ही ये सच्ची चीज है, उसके समान सुख का कारण कोई नहीं है। तो आपके कोई नाना जी वगैरह होंगे गोरी लाल जी अजमेरा, जानते आप समझ गए कि नहीं समझ गए, एक आदमी बड़े दादा और बड़े जाता जी दो आदमी तो समझ गए, छाबरा जी भी समझ गए होंगे। ये गोरी लाल जी अजमेरा थे, बहुत तेज नेचर के थे, अच्छे धर्मात्मा थे, पर इनके नाना जी थे रहे होंगे वो, तो वो बहुत गर्म नेचर के थे। तो बोले कितनी देर हो गई है, सेठों को गालियां देते देते पंडितों के गीत गाते गाते। मैंने बिल्कुल मैं उसका अर्थ कर रहा था कि ज्ञान समान आन जगत में सुख को कारण, मैं नाम लेके बता रहा हूं सबको, और धन समाज गज राज बाज तो काज न आवे, ख्याल में है ना। तो एकदम तो मैंने उनसे कहा कि ऐसा नहीं है, क्या नहीं है। तो मैंने कहा कि आप क्या समझते हैं, क्या आप विद्वान सेठ नहीं हो सकते, क्या सेठ विद्वान नहीं हो सकते। अरे यहां तो ज्ञान की प्रशंसा और धन की निंदा है, सेठों की निंदा नहीं है और पंडितों की प्रशंसा नहीं है, क्या है यहां पंडित सेठ है क्या, यहां तो ज्ञान समान न आन ऐसा लिखा ना, ज्ञान की बात है और धन समाज गज राजवाज तो इसकी बात है। तो जब मैंने ऐसा भेद बताया ना कि ये नहीं है, और मैं तो इस संत का अर्थ कर रहा हूं, तो एकदम बोले हाँ रहने दो रहने दो, हम सब समझते हैं तुम्हारे बराबर तो हमारे नाती खेलते हैं, समझ में आई ना। मैंने वो सचमुच मेरे दादाजी की उम्र के थे, मैं तो उस वक्त 18 वर्ष का था, 17-18 वर्ष का, जो पश्चाताप जब लिखा था तब की बात है जी, पश्चाताप उन्हीं दोनों लिखा था। और तुम्हारा मकान था ना वो हीरालाल जी वगैरह थे, उसके ऊपर ही वो मंदिर था, वहीं प्रचार होते थे, उसी में स्कूल चलता था। तुम्हें हम अनुभवी, तुम्हें अनुभव नहीं है बेटा अभी, बोले बड़ी सभा में। तो मैंने कहा अच्छा आप जानते हैं अनुभव किसे कहते हैं? मैंने कहा अनुभव की परिभाषा तुम्हें मालूम है? वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभवता को नाम, अनुभव चिंता मणि रतन अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष का अनुभव मोक्ष स्वरूप। तो मैंने ये बताई परिभाषा, अनुभव उसे कहते हैं। और तुम्हें धंधा पानी का अनुभव होगा, विषय कषाय का अनुभव होगा, ये अनुभव नहीं है, इसका ये अनुभव वास्तविक अनुभव नहीं है। जब मैंने इतना कहा तो वे बहुत गर्म हो गए, बहुत गर्म हो गए, चिल्लाने लगे, अब शेर थे सारे परिवार के लोग थे ऐसे, हम रोने लग गए गद्दी पे बैठे, 18 वर्ष के क्या बता रहे, बहुत भोगा है भाई कुमार जी जन्म से ही, समझे ना, अब तो कुटपुट के बहुत पक्के हो गए। मतलब बहुत बीज लोगों ने बीज बचाव किया, ये किया वो किया, शांति हो गई फिर तो हम तो चले जाएंगे, हम नहीं रहेंगे, प्रश्न करेंगे, फिर लोगों ने मना मनु करके रख लिया, फिर हमने 10 दिन प्रश्न किए, बहुत बढ़िया। ये सन 53 समझते हैं, 53 की बात है, और 54 में मेरी शादी हुई है, मैंने 19 वर्ष की उम्र में शादी हुई थी, उसके पहले की बात है जो कि ये हम उसका भेद ही नहीं समझते थे। कि जब से मुझे इस बात की परेशानी है कि पंडित और सेठों को अलग अलग खड़ा कर देते हैं, अब गुरुदेव के प्रताप से सैकड़ों सेठ पंडित हो गए हैं, रोजाना प्रवचन करते हैं क्यों, और सैकड़ों पंडित भी सेठ हो गए हैं। जो मैंने उस दिन कही थी उस दिन तो नहीं थे, उस दिन तो सचमुच ये हालत थी कि पंडित और सेठ बिल्कुल अलग अलग थे। और पंडित लोग ये कहा करते थे, पुराने पंडित, कि लक्ष्मी का और सरस्वती का परस्पर में बैर है, तो जहां सरस्वती रहेगी वहां लक्ष्मी नहीं रहेगी, और लक्ष्मी जहां रहेगी वहां सरस्वती नहीं रहेगी। अब लगता है कि वो बैर विरोध छूट गया है, अरे दोनों एक साथ रहने लगी है। तो मैं कह रहा था अर्थ व्यवहारेण व्यवहारेणा और व्यवहारेण, कि वो कहते हैं क्यों इसको नेगेटिव लेते हो, एक को तो कहते हो गड्ढे में गिरा दिया और एक को ऊपर उठा दिया, कि विद्वान लोग तो गड्ढे में गिरते हैं और मुनिराज को मोक्ष होता है। अब ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों में हो सकते हैं। तो उनने जयसेनाचार्य ने ये अलग अर्थ किया 300 वर्ष बाद, कि अब वो नीचे की पंक्ति से कैसे मिलाएं, तो उन्होंने क्योंकि लगा दी बीच में। विद्वान लोग व्यवहार में प्रवृत्ति नहीं करते हैं क्योंकि मुक्ति तो निश्चय के आश्रित रहने वाले संतों की होती, संतों माने विद्वानों के। अब वो एक ही शब्द पकड़ो दोनों जगह, वो कहते संत भी विद्वान और विद्वान भी संत, मैंने दोनों को एक अर्थ में लो और ऐसा अर्थ करो क्योंकि जब आत्मा के आश्रय से माने निश्चय के आश्रय से मुक्ति होगी तो विद्वान लोग व्यवहार में क्यों प्रवृत्ति करेंगे, ऐसा अर्थ इसमें किया है। ये सब नीचे इसमें सब लिखा है, देखो विद्वान लोग निश्चय नये के विषय भूत निज भगवान आत्मा रूप परम अर्थ को छोड़कर व्यवहार में प्रवृत्ते हैं, किंतु कर्मों का नाश तो निज भगवान आत्मा रूप परम अर्थ का आश्रय लेने वाले यतीश्वरों के ही कहा गया है। देखो इसमें जो अर्थ किया है ना, इसमें मूल में से क्या बदला है जरा देखो ध्यान से, प्रकाश जी देखो आप, जो मूल में नहीं है वो मैंने जोड़ा है। पकड़ो गलती पे, गलती निकालना भी तो सीखो। विद्वान लोग निश्चय नहीं के विषयभूत, मतलब निश्चय नहीं के ही है, और हमने निश्चय नहीं के विषयभूत नहीं, भगवान आत्मा रूप परम अर्थ को छोड़कर हमने वो निश्चय का अर्थ भी कर दिया कि निश्चय नहीं का विषयभूत जो पदार्थ है भगवान आत्मा, उसका नाम निश्चय नहीं है और उसे छोड़कर। कमल जी ख्याल में आई ना, वो निश्चय को छोड़कर था लिखा था अकेला, तो निश्चय की हमने ये व्याख्या कर दी उसमें नीचे, जबकि दूसरी जगह नहीं मिलेगी आपको, तो आपको पता नहीं पड़ेगा क्या हुआ और क्यों ये अर्थ समझ में आ रहा, वहां के क्यों नहीं आ रहा। वहां ऐसा कि निश्चय नए के को छोड़कर व्यवहार में प्रवर्तते हैं, बस गाथा में तो ऐसा लिखा। और हमने कहे निश्चय नए माने निश्चय नए के विषयभूत जो भगवान आत्मा है उसी ऐसा, और फिर नीचे व्यवहार में प्रवर्तते किंतु कर्मों का नाश तो भगवान आत्मा रूप परम अर्थ का आश्रय लेने वाली, फिर उन्होंने निश्चय का आश्रय लेने वाली, तो उसका हमने अर्थ किया कि निर्भगवान आत्मा रूप परम अर्थ का आश्रय लेने वाले, समझे ना। ये तीसरों के ही कहा गया है, अब ऊपर से आपको पता नहीं चलेगा तो हम नहीं बताएंगे। अब देखो टीका क्या लिखते हैं, कुछ लोग मोक्ष के पारमार्थिक हेतु से भिन्न जो वृत तपादि शुभ कर्म हैं, देखो कितना साफ शब्द लिखा है, साजन नहीं दिख रहे आज क्या बात है, अब पीछे बैठने लगे है? कुछ लोग मैंने राजेंद्र नहीं वैसे याद किया है कुछ लोग मोक्ष के पारमार्थिक हेतु के से भिन्न जो व्रत तप और शुभ कर्म हैं उन्हें मोक्ष का हेतु मानते हैं, यहां उन सभी का निषेध किया गया है, क्योंकि ये व्रतादि अन्य द्रव्य के स्वभाव वाले पुद्गल रूप हैं। ये व्रत पुद्गल हैं, जीव नहीं है, इस कारण उनके स्वभाव से ज्ञान का भवन, ज्ञान का भवन होना लिखा था ना, तो ज्ञान का भवन नहीं हो सकता जो पारमार्थिक मोक्ष हेतु है, वो ज्ञान का भवन है, पारमार्थिक मोक्ष हेतु है, वही एक द्रव्य स्वभाव वाला होने से उसके स्वभाव द्वारा ज्ञान का भवन होना बनता है। अब ये तीन चार कलश आएंगे, एक द्रव्य स्वभाव और अन्य द्रव्य स्वभाव। अब एक द्रव्य स्वभाव क्या है इसका अर्थ समझना पड़ेगा, इसका अर्थ समझ में नहीं आएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, अभी कल करेंगे, क्योंकि फिर इसकी एक घंटा घुटाई हो जाएगी ना, अभी बता भी देंगे तो कोई फायदा नहीं है।